मेला खेला उत्सव जाने में उपरांता रखनी चाहिए। हमारे मन में तो आती है कुंभ का मेला है उसमें भी उपरांता ही रहनी चाहिए। आप कहोगे कुंभ का मेला ये तो बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे संत इकट्ठे होते हैं और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर आने के लिए लोगों से कहा भी गया है, कहा भी जाता है, शास्त्र भी कहते हैं, परंतु हमने हमारी बात बताई है। तीर्थों में जाओ, सुविधा भी देखो, पर सत्संग नहीं हो और मेला खेड़ा में जाने से हमें तो झंझट मालूम देता है क्योंकि वहां साधन भजन तो होता नहीं। भगवान सिंगानिया ने कहा बंबई आओ, एक दो और भाइयों ने कहा बंबई आओ, पर साथ में ये नहीं कहा कि वहां पर हमको सत्संग कराओ। प्रेम रखता है भगवान इसलिए बोल दिया, मौका पर देखा जाएगा, पर उत्सव का डर बहुत लगता है। कहने का अभिप्राय है उत्सव में जाने की अपेक्षा पंचायती करना अच्छा है। लोगों के घरों में कोई गड़बड़ हो जाए, आपस में खटपट हो जाए, पंचायती कराओ, पर उत्सव मेले में मत जाओ। पंचायती करा करके मुकदमेबाजी से बचाओ। हमको कोई कहे कि कुंभ का मेला है चलो, और इधर कहते हैं पंचायती कराओ, तो हम पंचायती कराना ज्यादा अच्छा मानते हैं कि उससे राग द्वेष मिटेगा, मुकदमेबाजी से बचेंगे। कोई कहे कि दो तीन घंटा व्याख्यान देना ठीक है कि पंचायती, हम तो कहेंगे कि पहले व्याख्यान देंगे बाद में बैठ के पंचायती कराएंगे। इस वास्ते सौगंध तो नहीं है कि कहीं नहीं जाए, परंतु मन में आता है कि उत्सव आदि में जाना कोई फायदे की बात नहीं है। अब उत्सव में मान लो आपने बुलाया चले गए, वहां हमको ये कहना पड़े कि देखो जी इतने लोग इकट्ठे हुए हैं जी, इस मौके पर टेम रखो, लोगों का समय सत्संग में बीते, ऐसी जाकर कहें तो हमको लज्जा आती है क्योंकि वहां महारथी महारथी लोग इकट्ठे होते हैं, फायदा क्या है? वहां इतना तो फायदा है कि प्रशंसा खूब हो जाती है, जैसे कोई भाट लोग प्रशंसा करते हैं, पुल बांध देते हैं, ऐसे खूब प्रशंसा हो जाती है। संसार में विज्ञापन कराना हो तो जाओ, जिनके मान बढ़ाने की इच्छा नहीं वो मेला उत्सवों में क्यों जाए? हम तो यही तात्पर्य निकालना कि वहां जाने में फायदा ही नहीं है, बड़ी उपरांता आती है। हम तो आपसे भी कहते हैं कि आप लोग हमारी मदद करना। एक तरफ कोई उत्सव मेले में जावे जाने के लिए कहे, एक तरफ चंदा वाला आए तो बाबा चंदा देकर दोनों से पिंड छुड़ाओ, थे तो आर क्या होगा साहब उत्सव है चलो, अरे आर क्या साहब की चंदो दे हो, तो यानी चंदो दे रही हूं पिंड छुड़ाओ, और थाने कहते थानो पिंड छुड़ाओ, पिंड छुड़ाओ, रुपए से काम निकल गया तो अपना काम बन गया। असली बात हमने निगह करा दी। सत्संग के लिए कहीं को अरुचि नहीं है। अब हम आपको श्रद्धा की बात कहते हैं, बड़ी दामी है, आपके समझ में आएगी तो आपको भी दामी लगेगी। समझ में आए बिना मामूली दिखती है, कारण कि करना कराना कुछ नहीं है, समझने से धारणा बनाओ, नहीं समझ में आवे तो बैठा रहो नहीं समझ में आवे तो बैठा रहो। आपा खराब ही सही, कल आपको बताया था ये जो बड़का गाछ है भाई लोग पानी गाड़े बड़ समझकर पानी पिलावे, एक आदमी तो गाछ समझकर बरसा तक पानी पिलावे, तो उस बरसों पानी पिलाने से बढ़कर वह जो एक दिन इसको भगवान समझकर पानी पिलावे। एकनाथ जी ने तो गधे को साक्षात रामेश्वर जी समझकर पानी पिला दिया और उनको रामेश्वर भगवान के दर्शन भी हो गए। शास्त्र के हिसाब से सबसे बड़े परमात्मा हैं वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, अहम आत्मा गुड़ाकेश है सर्वभूताश है स्थित है, अहम आदिश्च मध्यंश भूतानाम अंत एव च। अरे इस गाछ के रूप में भगवान ही है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यह वृक्ष अचर के रूप में है, सेवक का काम क्या है? सेवा करना, जल पिलाना सेवा है। इस भाव से जल पिलाओ तो ये वृक्ष को जल पिलाना हो गया। वृक्ष को भगवान समझकर प्रणाम करो तो भगवान को प्रणाम हो गया। ये हम श्रद्धा की बात बोलते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। एक नंबर की बात है, सबको परमात्मा समझो। और यदि परमात्मा समझ में नहीं आवे और लोगों ने देखा कि इरे स्वभाव में तो आ कमी है, इरे स्वभाव में आ कमी है, भगवान ने किया माना, आ घटिया दर्जे की तो बात है, पर दो नंबर की बात बताने में आवे है कि इनको अपने से श्रेष्ठ मानो। ऐसा में तो थाने भगवान को नहीं मान सका, थारो स्वभाव चोखो को नहीं, तो आ दो नंबर ही तो बात है। भाई भगवान श्री महाराज चोखा हो जाए, कम से कम इतो तो मानो। कोई कहे कि अभी बात मासूत को नहीं वह, तब के बतावा, नीचे से नीचे उतर रहा बात कहवा कि कोई को अपमान तो मत करो, कोई को अपमान मत करो, बस इतो ही गणो। इसलिए कवि ने कहा है, आए थे कछु लाभ को खोए चले सब मूल, फिर जावोगे सेठ पर पल्ले पड़ेगी धूल। हम लोग मनुष्य शरीर में आए लाभ के लिए, सेठ हमारे भगवान, और लाभ लेने के लिए आए थे, परंतु मूल ही गंवा दिया तो अब पल्ले तो धूली पड़ेगी। मनुष्य को जो आयु दी है वो मूल धन है, इसे पाकर तो अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए और मूल धन भी कायम रख लेना चाहिए। कमाई भी हो जाए और मूल धन भी रह जाए, किंतु अपना तथा किसी का भी कल्याण नहीं किया और मूल धन को खा गए, धोखा कर दिया। फिर यमराज के पास जाएंगे तो धूल पड़ेगी। भगवान के भजन ध्यान में जो समय बीते कितनी उत्तम बात है। भगवान के भजन के अलावा जो समय जाता है वो उसमें धूली पल्ले पड़ती है। फिर जो झूठ कपट करते हैं वो तो ऋण लेना है, मूलधन भी खो दिया ऊपर से ऋण और ले लिया तो मालिक बहुत नाराज होगा। आप कहोगे कि मानव शरीर तो फिर प्रारब्ध से मिल जाएगा। अरे प्रारब्ध से मिल जाता तो कबू की करुणा नर दे ही देत ईश बिनु हेतु सनई। ये क्यों बोलते? अपने आचरणों की तरफ ख्याल करो, क्या इन आचरणों से मानव शरीर मिल सकता है? आप लोग खुद ईमानदारी से विचार करो। हमसे कोई पूछा जाए तो जो भगवान के समय में भगवान के भजन में समय नहीं लगाते हैं उनको मानव शरीर दोबारा मिलने का अधिकार नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े सुहृद हैं। जब उनके मन में प्रेम और दया का उद्रेक होता है, उद्रेक माने बहुत ज्यादा वेग आता है, तो वे मानव शरीर दे देते हैं। अनंत जीव है, मनुष्य तो समुद्र में एक लहर की तरह है। यदि नंबरवार देखें कि एक एक योनि में जाए और नंबरवार देखें तो करोड़ों वर्षों में मनुष्य का शरीर मिलेगा। आप विचार तो करो, मनुष्य शरीर में कितनी दया तक दया पड़ी है भगवान की। एक तरफ तो भगवान की दया को देखो और एक तरफ अपने आचरणों को देखो, रात दिन का फर्क है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, बिना हेतु कृपा करने वाले ने एक विशेष कारण से मानव शरीर दिया। संसार में कोई बिना कारण प्रेम करने वाला है? स्वार्थ मित्र सर स्वार्थ मित्र सकल जगमाई, स्वार्थ मीत है वह, स्वार्थ मीत सकल जगमाई, सपने उ प्रभु परमार्थ नाई। स्वार्थ त्याग करने वाले या तो हे भगवान आप हो और या आपके प्यारे भक्त है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब अपने स्वार्थ को लेकर प्रेम करते हैं भगवान और उनके भक्तों को छोड़कर। ऐसी बात यदि आपके समझ में आ गई होती तो आप एक मिनट भी भगवान को छोड़ नहीं सकते थे। जिस व्यापारी को पता चले कि मेरे व्यापार में इस लाइन में चलने में बहुत बड़ा मुनाफा है, फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। चाहे बाप कहे, चाहे बेटा कहे, चाहे भाई कहे, चाहे लुगाई कहे, उसको व्यापार में लाभ दिखता है, वो उस लाइन को नहीं छोड़ेगा। परंतु इस बात को कोई कहे कि आप लोग भगवान की तरफ चलो, भगवान की दया मानो, तो कौन सुनता है? मनुष्य का शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाता है वह अमृत के बदले विष लेता है, पारस को छोड़कर चिरमियों को लेता है। देखो चारों तरफ बारूद ही बारूद और विष विष पड़ा है, केवल एक कोठड़ी खाली है, उसमें न आग का न विष का असर होता है। तो समझदार आदमी बारूद और विष की कोठड़ी में क्यों रहेगा? समझदार आदमी तो उस खाली कोठड़ी में जाएगा। ऐसे ही संसार में बारूद और विष भरा हुआ है। परमात्मा ही एक खाली कोठड़ी है विष और बारूद से। यहां से दौड़ो जितना दौड़ सके दौड़ो, बारूद फट जाएगा, मर जाओगे, बचना हो तो परमात्मा की शरण ले लो, उस कोठड़ी में जाकर बैठ जाओ। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति का परमिट नहीं तो क्या है? दुकान पर परमिट लेकर जाते हो और कहते हो भाई हमारा परमिट है, हमको अनाज दो। कोई बिना परमिट चला जाए तो कहेगा भाई परमिट लाओ, बिना परमिट अनाज नहीं देंगे। ऐसे ही मानव शरीर परमिट का है। संतों के पास जाओ, सत्संग में जाओ और कहो हमको भगवान की प्राप्ति कराओ। संतों के पास यदि कोई जानवर चला जाए तो कहेंगे भाई तुमको सत्संग क्या कराए। तो परमात्मा की प्राप्ति है ये इस परमिट से मिलती है। अब इस परमिट को फाड़ दो फेंक दो तो तुम्हारी मर्जी, और परमिट का उपयोग कर लो तो तुम्हारी मर्जी। हमारी दृष्टि में परमात्मा के सिवा विषयों में पड़े रहना और धन आदि के अंदर ही पड़े रहना परमिट को फाड़कर फेंकने के समान है। आपको फिर एक तात्विक बात बताई जाती है। आप कहें कि अमृत तो मीठा होता है, भगवान का भजन तो ऐसा मीठा लगता नहीं, क्या बात है? हम कहते हैं परमात्मा का भजन भी मीठा है, आनंद तो नहीं आता, मीठापन नहीं लगता। यदि मीठापन होता तो हम क्यों छोड़ते? यदि भगवान में आनंद होता तो क्यों छोड़ते? तो इस बात को इस प्रकार से समझना चाहिए। मिश्री मीठी होती है परंतु जिसके पित्त की बीमारी है उसे खारी लगती है, पर उसको धीरे धीरे चूसते रहो, चबाओ मत, चूसते रहो। जो जो चूसते रहोगे पित्त शांत हो जाएगा तो मीठा लगने लग जाएगा। इसी प्रकार हमारे संसार की रुचि है, ये पित्त का ज्वर है। अभी भगवान मीठे नहीं लगेंगे, पर संतों ने महात्माओं ने कह दिया है कि भगवान का नाम लेते रहो मीठे लगने लग जाएगा, तो वे वेद्य है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। मिश्री खारी लगती है, आपको आश्चर्य होता है। इसी प्रकार संतों को आश्चर्य होता है कि भजन ध्यान सत्संग ये अच्छा नहीं लगता। कितना आश्चर्य, संतों को आश्चर्य होता है। इतना आनंद तो किसी चीज में नहीं है, आप इसमें लग जाओ। प्रारंभ में थोड़ा बहुत आपको नीरसता लगेगी, पर ज्यों ज्यों आपकी बीमारी मिटेगी त्यों त्यों आपका इसमें रस मिलेगा। हमसे कोई कहे हम तो कहेंगे अमृत भी आपको उस समय फीका लगेगा। पहले ही पहले आपको विश्वास करने की जरूरत है। डॉक्टर आपको कोई भी दवाई देता है तो आप उस पर विश्वास ही तो करते हो। ऐसे भजन ध्यान सत्संग पर खूब विश्वास करो, सब बातों को भूल जाओ। भजन अच्छा नहीं लगता इस बात को भी भूल जाओ, भजन में रस नहीं आता है, मीठापन नहीं होता इस बात को भी भूल जाओ। विश्वास करो कि मीठा लगेगा, आज नहीं तो फिर लगेगा, आगे चलकर लगेगा, विश्वास कर लो। इसको श्रद्धा बोलते हैं। वैद्य की दवाई खारी लगती है, वैद्य कहता है आंख मीच कर पी लो। रोगी कहता है बहुत कड़वी है, मेदी कहता है बस पी लो और मुंह बंद कर लो, पर वो रोगी समझता है कि अभी तो ये कड़वी है लेकिन लाभ बहुत करेगी, तो वो पी लेता है, जी मचलाता है, आंख बंद करता है, मुंह बिगाड़ता है, पर परिणाम पर विचार करता है। ऐसे ही परिणाम पर विचार करो, बहुत बढ़िया दवा है अपने लिए, सबसे बढ़िया दवा है भजन साधन सत्संग ध्यान, नाम का जप। इसके समान आपकी बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है। दूसरा कोई दूसरी दवा बताते हैं वे या तो ठग हैं या मूर्ख हैं। बीमारी का निदान हो गया, औषध का निदान हो गया, अब तो केवल सेवन करना बाकी है। आप कहोगे हम तो बहुत दिनों से राम राम करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, बीमारी मिटी नहीं, तो इसका उत्तर यही है कि आपने दवाई तो ले ली वैद्य जी के यहां से और ले जाकर के अपने अलमारी में रख दी, खाई नहीं है। कभी कभार खाई भी हो तो साथ में कुपथ किया है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। कुपथ किया है, विषयों का सेवन भी करते हो और सत्संग भी करते हो, ये कुपथ है। अथवा जो बातें सत्संग में सुन ली उनको काम में नहीं ली, ये दवाई को ले जाकर ताले में बंद करने के समान है। अनन्य चेता सत्तम योमाम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त से योगी न है। आपने कुछ मात्रा दवाई की कम ली, इसी कारण से बीमारी टिक रही है। अब आप ये सिद्धांत बना लो, हमारी तरफ से हम भगवान को एक मिनट भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ प्राण निकलता हो और भगवान की याद आती हो, एक तरफ प्राण बचता हो लेकिन भगवान भूले जाते हो, इन दोनों में से आपको क्या पसंद है? कहने में तो कह दोगे कि प्राण छोड़ना पसंद है पर भगवान को भूलना पसंद नहीं है, परंतु ऐसा मौका आवे तब पता चले, अरे बाबा भगवान को तो फिर भी कर लेंगे, प्राण तो बचाओ फिर बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान को आप जितना आदर दोगे उसी समय भगवान तैयार है। भगवान का मूल्य आप दे ही नहीं सकते हैं। आप पूछोगे भगवान का मूल्य क्या है, जब आप दे ही नहीं सकते तो क्यों पूछते हो? तो बता तो दो, उनके प्रेम का मूल्य है निष्काम प्रेम। भगवान से कुछ नहीं चाहें और भगवान से प्रेम करें, निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम से खरीदे जा सकें। भगवान ने भक्तों को थोड़ी सी और छूट दे दी, जैसे माँ के कई बच्चे हैं पर छोटा ही बच्चा है उसको थोड़ी रियायत देती है, ऐसे भगवान भक्तों को रियायत देते हैं कि अरे तुमसे निष्काम प्रेम नहीं हो तो सकाम ही कर लो। और छोटा बेटा आया कि माँ मुझे भी थोड़ी सी छूट और दो। अच्छा ठीक है, प्रेम से नहीं स्मरण, प्रेम से नहीं हो तो यूं ही स्मरण तो करो, और कोई छूट मांगने के लिए बच्चा आया कि माँ अब तो मुझे तो और ज्यादा छूट देनी पड़ेगी, तो कहा निरंतर नहीं हो सके तो अंतिम समय में कर लो। परंतु ये तो छूटे हैं, ये लेनी नहीं चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, बादल देख करके घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। वाह, बादल है साहब, कालो कालो बादल है, अबार बरस जाए, काई करना घड़ो राग, और वो तो हवा में बह जाए और मटको और चलो जाए। परमात्मा का भजन ध्यान बहुत काम की चीज है, इससे बढ़कर आपका दूसरा कोई काम नहीं है। बादल देखकर घड़ा फोड़ने के समान कोई पश्चाताप की बात नहीं है। वर्षा के समय घड़ा मिलेगा कि नहीं क्या पता, भरा हुआ मटका है, खूब बरसात आती रहे तब तो भर लो, उसको खाली कर लो, नया पानी भर लो, पर बादल को देखकर घड़े को फोड़ दो और पानी फेंक दो, क्या फायदा? घड़ा तो बादल के गरज के सारे है, बादल को वो घड़ा बुला थोड़े ही सकता है, परंतु निरंतर भगवान भजन वाला घड़ा है उसमें भगवान रूपी बादल तो बुलाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए ये काम तो बादल के अधीन है। हमसे कोई पूछे कि हम तो निरंतर भगवान का स्मरण करें और अंत काल में भगवान याद नहीं आवे तो हम कहते हैं मत आओ, आपको भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। कैसे? अभी बताया ना, अनन्य चेता सत्यम योमाम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ है। उसका तो अंतकाल के पहले ही काम पूरा हो गया, घबराओ मत, इस मार्ग में बड़ा आनंद है, श्रद्धा करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, इस बात के लिए इकरार करने की जरूरत है। हजारों आदमियों के बीच में कह सकते हैं, भविष्य के लिए भी कह सकते हैं, कोई कहे कि तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी तो हमारे से पहले भगवान की बात झूठी होगी, परंतु भगवान की बात झूठी होती नहीं। यदि भगवान की बात झूठ हो जाए तो फिर भगवान क्या, कहीं धोखे का काम नहीं है। निरंतर भगवान का स्मरण करो, जागने के समय आप कर लो, सोने के समय भगवान आप अपने आप करवा लेंगे। कई महात्मा ऐसे हैं जो खूब गहरी नींद लेते हैं और होठ चलते रहते हैं, भगवान अपने आप, भगवान को भजन कराना आता है, आप भजन में लग जाओ, भगवान अपने आप भजन करा लेंगे। जैसे ड्राइवर केवल गाड़ी के पुर्जों को इधर उधर करता है, चलने का काम गाड़ी अपने आप गाड़ी चलती है, परंतु गाड़ी खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी के पीछे वो गाड़ी लगती है, आगे लगती है और उसको अपना आप घसीटती, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता। योगक्षेमम वाहम्यहम्, यदि हम भगवान का भजन करें और भगवान हमारी योगक्षेम का वहन करें तो भगवान का नियोरा थोड़ा ही है, तो भगवान का नियम है, भगवान को अच्छा भी लगता है। आप भगवान के घर पर हो, आप भजन ध्यान में लग जाओगे तो जो भगवान के गुण है वो आप में आ जाएंगे। भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान के गुण, भगवान का ज्ञान सब एक चीज है, श्रद्धा के लायक एक ही चीज है, फिर भी आप इस काम में नहीं लगकर दूसरे कामों के अंदर रुचि पूर्वक भाग लेते हैं तो फिर अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनी। भगवान की प्राप्ति का परमिट मिला हुआ फिर रद्द हो जाएगा, फिर कैद मिलेगी, वहां आपका कमाया हुआ धन दौलत क्या काम आएगा? इसलिए हिम्मत रखो, भगवान का भजन करने में यदि घर वाले नाराज भी हों तो उनकी इस नाराजगी की परवाह मत करो, भगवान का स्मरण करो। पर भगवान के स्मरण करने वाले से घरवाले नाराज हुआ नहीं करते। घर का काम धंधा न करने का एक बहाना ले लिया कि हम तो भजन करते हैं, हमसे घर का काम नहीं होता है। घर वालों को भी कह देना चाहिए कि बैठ करके केवल भजन करो, तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे। पर श्रद्धा से करने पर सब काम ठीक होता है। सुरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आप जो कुछ सेवा करते हैं भगवान ही उस रूप में लेने वाले हैं, इस भाव से सेवा करो। निरंतर भजन होने लगेगा। हरदम ये समझो कि मैं चाह, कितनी बढ़िया बात, ध्यान देना। हरदम ये समझो कि मैं चाहे भगवान से प्रेम नहीं करूं पर भगवान मेरे से प्रेम करते हैं। मैं चाहे जैसा भी हूं लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, वो मुझे प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं, हर क्षण मेरे पीछे रहते हैं, मेरे आगे रहते हैं, मेरे दाएं रहते हैं, मेरे बाएं रहते हैं, मेरे पास ही बैठे रहते हैं, मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे साथ ही खाते हैं, दिखते नहीं तो क्या हुआ, मेरे साथ ही है। भरत जी कह रहे हैं 100 करोड़ जन्मों में भी जिसका उद्धार हो, ऐसा पापी भी हो, किंतु भगवान के गुणों की तरफ ख्याल गया तो उसको तत्काल शांति मिलती है। इस वास्ते भगवान के गुणों की तरफ देखो, अपनी तरफ क्या देखो, अपनी तरफ तो खूब देख लिया, अपने से कुछ नहीं हुआ, जगत में अपने को बड़ा भी माना, धनी भी माना, विद्वान भी माना, क्या फायदा हुआ? अपने में न होने वाले गुणों को देखा, अब भगवान के गुणों की तरफ देखो। श्वास पूर्वक नाम नाम रहो, श्वास आए राम 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 राम। सबसे बढ़िया तो यह है, श्वास लेओ, राम राम करो, बोलो मत। आलस आने लगे तो बोल करके ले, फिर भी आलस आए तो चलते फिरते ले, भजन को मत छोड़ो। और भगवान से कहो कि भगवान अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति। अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, मेरा शरण कौन है, कौन बचाने वाला है? प्रभु आप ही हो। गुरु कृपालो कृपया वदैतत विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका। आपके चरणों की दीर्घ नौका ही मेरे काम आएगी, कोई काम नहीं आएंगे। भगवान के चरणों का ध्यान है, ये संसार से पार होने की नौका है। हनुमान जी ने भगवान को याद किया तो समुद्र पार हो गए। कितने विघ्न आए, हनुमान जी के सामने विघ्न खत्म होते गए। ऐसे ही आप हनुमान जी बन जाओ और संसार को सागर मान लो, और नाम है ये हनुमान जी की जैसे शक्ति थी ऐसे अपनी शक्ति लेकर के चलो। भगवान के भजन में इतनी महिमा है, इसलिए हमें निरंतर भजन ध्यान करना चाहिए। यह हमने आपको तात्विक बात बताई है, और समझो परमात्मा जो है, परमात्मा का तत्व समझ में आ जाए तो समझने के साथ ही वो परमात्मा ही बन जाया करता है। जिसको महात्मा का तत्व समझ में आ जाए वो उसी समय महात्मा बन जाता है। जैसे किसी विषय का चिंतन करते ही वो विषयी हो जाता है, ऐसे भगवान का तत्व समझ में आ जाए तो भगवान बन जाता है। सब कुछ वासुदेव है, वो परमात्मा का तत्व है, वो जान गया। इस प्रकार को जानने वाला महात्मा मेरे लिए बड़ा दुर्लभ है। सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, ऐसा समझना ही परमात्मा का ज्ञान है। अपनी बुद्धि आज तक जिस वस्तु को देखती थी, अब वो उस वस्तु को परमात्मा मानने लगी। रस्ते में चल रहे हैं, बातें करते करते ध्यान नहीं आया और एक नदी दिखाई दी, हमको छींक आ गई, हमने नाक छिनक दिया, नदी है ही, नाक छिनक दिया। एक कहता, अरे क्या करते हो? कि भाई नाक में पानी आ गया। ना कहां से करते हो? ये गंगा है। ओहो, ये गंगा है। तो उसको वो, उसकी समझ में एक नदी थी, अब समझ में वो गंगा है। बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भीतर में कितना फर्क पड़ गया। ऐसे ही ये भगवान है, ऐसा समझने पर वस्तु का रूप रंग नहीं बदलता है, पर भीतर का भाव बदल जाता है। एक मिनट में चूंद खुल जाती है, मारवाड़ी शब्द है। इस मान्यता से कितना बेड़ा पार हो गया। हरे रंग का चश्मा चढ़ाओ, हरा दिखता है। इसी प्रकार से भगवान का रंग चढ़ाओ, सब भगवान दिखेंगे। है तो परमात्मा ही, आपने गलत चश्मा लगा लिया, सही चश्मा लगा लो। आपको दिग्भ्रम हो गया, अब सही विचार कर लो। जो परमात्मा है, जो कुछ है वो परमात्मा है, जो कुछ है वासुदेव है। नाना प्रकार का रूप देखने में आता है, ये भगवान का ही रूप है। जैसे बलदेव जी को सब साक्षात कृष्ण ही दिखते थे, ब्रह्मा जी की लीला में गाय भी थी, बछड़े भी थे, लेकिन बलदेव जी ने गौर से देखा तब सब कृष्णमय दिखाई दिए। कृष्ण से पूछा, क्या बात है? ये ग्वाल बाल, ये बछड़े कल तक मुझे और दिखते थे, अब ऐसा क्यों दिखता है? भगवान के देखने के तरीके से ही समझ गए कि सब कुछ भगवान है, जो कुछ है वो भगवान का स्वरूप है। बताएं साहब, सेठ जी की बात में थोड़ा अभ्यास करने की बात आवे, और महाराज जी ने अभ्यास की बजाय समझ री बात पर ज्यादा जोर देने की बात है। तो एक बार महाराज जी पूछे भी सेठ जी ने कि सेठ जी, थे तो अभ्यास पर थोड़ा जोर ज्यादा दे हो। सेठ जी किया कि लोग हैं प्रमादी बहुत है, બેને પ્રમાદ શું છૂટાણ વાસ્તે અભ્યાસ કો જોર દેવાનો. હા, ઓર મે જબ પ્રમાદ છોડ ભજન મે લાગે બીર બાદ મને પૂછે તો મેં સમજ પર જોર દેવું. આ વાત કોઈ મર જાતા હૈ તો રોના નહીં ચાહીએ. રોને સે ભગવાન કા અપમાન હોતા હૈ. અપને આપ જો રોના હોતા હૈ ઉસમેં હમારે મોહ કા સ્વભાવ હૈ. સત્સંગ કે દ્વારા ઇસ મોહ કો મિટાના ચાહીએ. ખાસ બાત હૈ. આપણે કિસી દુઃખ કો લેકર ભગવાન કે સામને નહીં કહેના ચાહીએ. પરંતુ દ્રૌપદી જૈસી સ્થિતિ હો જાય તો ભગવાન કે સામને કહેને મેં ભગવાન કો આનંદ કા અનુભવ હોતા હૈ. વિદુર કે યહાં ભગવાન ને કેલે કે જો છિલકે ખાએ ઉનમેં ભગવાન કો જો આનંદ આયા વો આનંદ ભગવાન કો કભી નહીં આયા. ઇસલિયે હમ બોલતે હૈં કે ભગવાન મેં પ્રેમ રખના ચાહીએ. અડંગ બડંગ સ્વાહા કર દેના ચાહીએ. એકાંત મેં જ્યાદા રહો, ધ્યાન કરો. બહાર ભીતર રોમ રોમ મેં પરિપૂર્ણ આનંદી આનંદ કો દેખો. આનંદમય 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 આનંદી આનંદ. ચાહે આનંદ કહો ચાહે નારાયણ કહો, એક હી બાત હૈ. આનંદ હૈ વહી પરમાત્મા હૈ. આનંદ કી અનુભૂતિ નહીં હો તો ભી આનંદ બોલને સે આનંદ કી અનુભૂતિ હોતી રહેગી. ઊંચે સે ઊંચા ભજન યે હૈ કે આપ જો ભી કર્મ કરો ઉસકો ભગવાન કી સેવા સમજ કરકે કરો તો વો કર્મ આપકા ભજન હો જાયેગા. ઊંચે દરજે કા ભજન બતાયા હૈ. ભગવાન મેં વિશુદ્ધ પ્રેમ રખો. ભગવાન ભી આકર કુછ માંગને કે લિયે કહે તો ભી કુછ મત માંગો. ભગવાન બિક જાયેંગે. ભાવ સે ક્રિયા મેં ફરક પડતા હૈ. બોલ બોલ કર જપ કરને સે અચ્છા હૈ શ્વાસ સે જપ કરના ચાહીએ. ઓર ઉસસે ભી બઢકર માનસિક જપ હોતા હૈ. સેવા કે બારે મેં કુછ કહેતે હૈ. આપ કિસી કો કોઈ ચીજ દેતે હૈ લેકિન તિરસ્કાર કે સાથ દેતે હૈ તો યે આપકી તામસી સેવા હૈ, તામસી દાન હૈ. યા આપ અપને યહાં કામ કરને વાલે કો કુછ દેતે હો યે રાજસી દાન હૈ. સારે સાધન સારી ક્રિયા ભાવ કે ઊંચે હોને સે હી ઊંચી હોગી, નહીં તો ઊંચી નહીં હો સકતી. દાન દેના ઊંચી ક્રિયા હૈ પર ભાવ સે વો દૂષિત હો જાતી હૈ. બડી ભારી ક્રિયા કી, બડા ભારી યજ્ઞ ક્યા. યજ્ઞ ક્યા હે તો અચ્છા ક્યા, પર દૂસરે કે અનિષ્ટ કે લિયે ક્યા, વો તામસી હો ગયા. એક ભાઈ છોટા સા કામ કરતા હૈ નિષ્કામ ભાવ સે. યે છોટા સા કાર્ય મહાન ભય કો તારણે વાલા હૈ. 100 વર્ષ તક અતિથિ કો રોટી જમાને વાલી એક સ્ત્રી હૈ. ઓર દૂસરી એક સ્ત્રી કો એક સ્ત્રી એક કો આદર સત્કાર પૂર્વક પ્રેમ સે જિમા લેતી હૈ તો વો એક વાર જિમાઈ વો ઉત્તમ હૈ. ईश्वर समझ करके जिमाया जाए तो वो तो बात ही अलग है। राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें 10 मांगा उसे 100 दिया, जिसने 1000 मांगा 10000 दिया, माने मांगने से 10 गुना ज्यादा दिया, ये कानून ही बना दिया, घी का तालाब भर दिया। ऋषियों ने कहा वाह कैसा यज्ञ हुआ, आज तक ऐसा यज्ञ नहीं हुआ, कैसा दान हुआ, ऐसा आज तक दान नहीं हुआ। लाखों आदमियों ने वस्त्र भोजन सब किया लिया, एक न्योड़ा निकला, निकलकर सभा में मनुष्य की बोली में बोलने लगा, सुनो आप लोग क्यों झूठी प्रशंसा करते हो, इसमें कोई तथ्य नहीं है, मैंने एक तपोवन में इससे भी कितना ही महान बड़ा यज्ञ देखा। शिलोंश वृत्ति वाले ब्राह्मण की पूरी कथा सुनाई, कहने का अभिप्राय है कि यहां एक ब्राह्मण को भोजन कराना, कहां लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराना, क्रिया में कितना फर्क है, किंतु वहां कितना त्याग है कि वो शिलोंश वृत्ति वाला ब्राह्मण प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। इसी प्रकार यदि साक्षात परमात्मा समझकर भोजन कराया जाए तो कितनी बड़ी बात है। जितनी अधिक श्रद्धा अधिक आदर सत्कार होता है उतनी वो चीज दामी हो जाती है। जो भजन आदर प्रेम सत्कार पूर्वक किया जाता है उतना ही दामी हो जाता है। स्त्री अपने पति की सेवा करती है किंतु यदि दुखी होकर करती है तो नहीं करने से तो अच्छा है किंतु सेवा से मुक्ति हो जाएगी, ये बात नहीं है। परंतु वह यदि कठपुतली की तरह संकेत मात्र से इशारा समझ करके आज्ञा का पालन करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अपनी कोई निजी इच्छा न रखे, वो तो यही समझे कि इनके हुक्म के माफिक अपने आप को अर्पण करना है। वर्षों साधन सेवा करने से जो चीज प्राप्त होती है वे एक मिनट के कार्य से प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमें जो कुछ करना हो प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए। व्यापार करो खेती करो निष्काम भाव से करें, व्यापार से मुक्ति हो जाएगी। वास्तव में भाव ही प्रधान है। हमें विलंब हो रहा है क्योंकि हम भजन ध्यान करते हैं वह बेगार पूर्वक करते हैं, बेगार काटते हैं। पाठ पूजा करते हैं तो अपनी बेगार काट के करते हैं। भगवान अंतर्यामी है, सब पहचान रहे हैं हमारी श्रद्धा को। हम जो कार्य करते हैं वो कम दामी है, उसका फल भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। द्रौपदी ने पुकार पुकार करके सकाम भाव से भी कहा, हे नाथ जल्दी आओ, मेरा धर्म नष्ट हो रहा है, सब लोगों के बीच में स्त्री को इस प्रकार से अपमानित करते हैं, हे भगवान आप मेरे हो फिर क्यों इतना विलंब कर रहे हो, भगवान आ गए। द्रौपदी यदि इसी बात को निष्काम भाव से कहती तो क्या होता, कितनी बड़ी बात हो जाती, पर अपना समझ के कहा तो भगवान निष्काम उष्काम सब भूल भाल गए। क्या आप लोगों में ऐसा प्रेम भाव है? भगवान की शरद देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या मांगते हैं भगवान, प्रेमी तो मांगते हैं, और आप भगवान को क्या दे सकते हो। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है ये बात करने से ही समझ में आ सकती है, व्याख्यान से समझ में नहीं आ सकती। इसी प्रकार से परमात्मा के प्रेम की बात भी परमात्मा से प्रेम करने पर ही समझ में आती है। एक बात बताते हैं, एक बार सत्यभामा द्रौपदी से मिलने के लिए गई। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी जी मेरे तो एक पति हैं, वे भी मेरे अधीन नहीं हैं, आपके पांच पति हैं वो आपके कैसे अधीन रहते हैं? तुम कोई डोरा मंत्र जंत्र जानती हो क्या? यदि कोई जानती हो तो मुझे ही बताओ। तो द्रौपदी ने कहा, सत्यभामा जी, आप जिस प्रकार की बात कहते हैं ये उच्च स्त्रियों के लायक बात नहीं है, ये तो बहुत नीचे स्त्रियों की बात है। मेरे पति मेरे पर कृपा करते हैं उसका कारण सुनो। मेरे पति जब बाहर जाते हैं तो वे बैठते हैं तब मैं बैठती हूँ, और जब मेरे पति बाहर से आते हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, और जब वे बैठते हैं तब मैं बैठती हूँ। वे नौकरों से जल मांगते हैं तो मैं दौड़कर जल लेकर आती हूँ। जब मेरे पति राजा थे मैं आय व्यय का सब हिसाब रखती थी और अतिथियों को भोजन करा करके बाद में भोजन करती थी। आप भी ऐसा ही करो। इस प्रकार पातिव्रत धर्म का आचरण करने से पति वश में होते हैं, पर पति वश में हो न हो पति को वश में करने का भाव ही खराब है। हमें तो हमारा पातिव्रत धर्म का पालन करना है। पतिव्रता स्त्री के बार बार रोमांच होते रहते हैं, अश्रुपात होता है, पति की आज्ञा संकेत की प्रतीक्षा रहती है। गोपियां प्रतीक्षा करती कब भगवान जंगल से आवें, कब भगवान के दर्शन करें। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी अपने पति की प्रतीक्षा करती रहती है कि कब वो किसी बात का संकेत करें, कब मुझे आज्ञा दें। पति के मन के माफिक पति को साक्षात परमेश्वर समझकर सेवा करना, ये पति की सेवा नहीं साक्षात परमात्मा की सेवा है। इसी प्रकार लड़का माता पिता की सेवा करे तो माता पिता की सेवा नहीं भगवान की सेवा है, उसमें उसका कल्याण हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य बाकी बात नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण